الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضاً گرامی قدر، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. المورد کے زیر اہتمام ویبینار کا یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے اور اب تک ہم 20 سے زائد دفعہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کر چکے ہیں. ویبینار کا مقصد اور پس منظر میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ابلاغ کے میدان میں ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں فاصلے سمٹ گئے ہیں. آپ اپنی آواز کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. فاصلاتی تبادلہ خیالات کا ایک نیا میدان دنیا میں کھلا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فاصلے اب غیر اہم ہو چکے ہیں. زمان اور مکان کی بعد کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اہل علم کے مابین تبادلہ خیالات، ان کی تحقیقات ایک دوسرے تک پہنچانا، ان کا باہمی ربط بڑھانا، اس سلسلے کو مزید منظم کیا جائے اور دنیا میں موجود ایسے صاحبان علم جو کسی بھی میدان میں مذہبیات سے متعلق تحقیق کر رہے ہیں وہ اپنی تحقیق یہاں پر پیش کریں اور دنیا کے کونے کونے میں موجود لوگ ان کی اس تحقیق کو سنیں، اس پر سوال کریں. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی نئی تحقیق ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ وہ پوری کی پوری صحیح ہو. ہر بات، ہر نقطہ نظر، ہر تحقیق تنقیح کے مراحل سے گزرتی ہے اور لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس پر سوالات کرتے ہیں. اس پورے سلسلے کے نتیجے میں تحقیق بھی نکھر کے سامنے آتی ہے. تو المورد کا شعبہ علم و تحقیق، اس کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ایسے فورمز کا انعقاد کرے جس میں عالمی سطح پر اہل علم علماء کے درمیان روابط کو بڑھایا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 20 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں اور اب یہاں پر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں. میرا تعلق چونکہ المورد کے شعبہ علم و تحقیق سے ہے، میں اس کا نگران ہوں، تو اس حیثیت سے آج کے ویبینار میں میں کچھ گفتگو جو ہے وہ پیش کروں گا. موضوع آپ کے سامنے ہے، علم حدیث اور جدید سافٹ ویئر. دیکھیے، ہمارا موضوع ہے حدیث کے علم سے متعلق جو جدید سافٹ ویئر ہیں اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی جائے. وہ طالب علم جو دینی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا وہ عام لوگ بھی جن کو مذہبیات میں دلچسپی ہے، جو روزانہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ حدیث کا صحیح معنی اخذ کریں، وہ حدیث کے صحیح مطالب تک پہنچیں، اس کے اطلاقات کو واضح کریں، تو اس کے لیے وہ کیا راہیں اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی طور پہ آج کا موضوع ہے. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے جسے لوگوں نے سن کر ہم تک پہنچایا ہے. لہذا اس لحاظ سے یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. جس طریقے سے ہسٹری ہم تک پہنچتی ہے، بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال، آپ سے منسوب اقوال جو لوگوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ بات فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال لوگوں نے بیان کرنے شروع کیے، تو ابتدا میں یہ سائنس کی طرح کوئی علم مرتب نہیں ہو سکا تھا جس کی بنیاد پہلے پڑتی اور پھر لوگ اقوال بیان کرنا شروع کرتے. ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا. یہ ایک فطری انداز میں، جس طریقے سے ہم کسی بھی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان سے ہمیں ایک انسیت ہوتی ہے، ہم سے استفادہ کرتے ہیں تو ہم ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں، اور جب ہم کبھی ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی محفل سے ہٹتے ہیں، تو لوگ ہم سے بھی تقاضا کرتے ہیں، اور ہماری اپنی فطرت کے اندر بھی یہ عرض موجود ہے کہ ہم ان سے اپنے تعلق کا بھی اظہار کریں، ان سے جو باتیں سنی ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ تو ایک عام اہل علم علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، ان کی مجلس میں لوگوں کو بیٹھنے کا یہ موقع ملے تو ان کے اندر کس درجے میں یہ خواہش پائی جائے گی کہ وہ جو استفادہ آپ سے کرتے تھے، جو آپ کے شب و روز تھے، جو آپ کے معاملات تھے، جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے تھے، جس طریقے سے آپ فیصلے کرتے تھے، جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے تھے، جیسا آپ کا حلیہ تھا، جیسا آپ کا روزمرہ تھا، وہ سب بھی دنیا تک پہنچائیں۔ لہذا جب یہ پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے کافی عرصے کے بعد کچھ اہل علم نے اس پر غور کیا کہ یہ باتیں تو بیان ہو رہی ہیں رسول اللہ سے، تو کیوں نہ ان کی تحقیق کی جائے۔ یہاں پر وہ مرحلہ شروع ہوا جس مرحلے کو ہم کہتے ہیں کہ علم حدیث کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں نے کچھ قواعد بنائے، کچھ ضابطے بنائے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہمیں رسول اللہ کی نسبت سے لوگ بتا رہے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ضعف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اصول وضع کیے۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں ان اصولوں کی تنقید کروں یا میں یہ بتاؤں کہ وہ اصول کیا تھے، لیکن صرف نتیجے کے لحاظ سے اپنے فہم کے مطابق یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت فطری اصولوں پر ہمارے بزرگوں نے ان کا جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ اس علم کی تنقید کی جائے، اور رسول اللہ سے منسوب جو درست اقوال ہیں، جو صحیح اقوال ہیں، جو ان کے فہم کے مطابق ثابت شدہ اقوال ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں جائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے جو حکمران تھے، مذہب سے ان کی دلچسپی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے مقاصد ممکن ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری امت کی جو تاریخ ہے اس کے اندر مسلم حکمرانوں کا مذہبی علوم اور فنون کی ترویج میں بہت غیر معمولی کردار رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان بالعموم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، اور کسی ایک وجہ سے پوری کی پوری کاوش یا خدمت کو مجسم شر سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں حکمرانوں کی بہت ساری قسمیں گزری ہیں، بہت سارے استبدادی حکمران تھے، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ بھی کیا، انہوں نے کشت و خون کی ندیاں بھی بہائیں، انہوں نے ظلم بھی کیا ہوگا، لیکن انہی حکمرانوں کے سلسلوں میں سے ایسے حکمران ہمیشہ سے موجود رہے جنہوں نے اس دور میں موجود علوم اور فنون کو ریاست کی سطح پر فروغ دینے کا اہتمام کیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کی سطح پر، تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ موجودہ دور میں تو شاید اس طرح کے ذرائع ابلاغ پیدا ہو گئے ہیں، ایسی این جی اوز بن گئی ہیں جو ریاست سے الگ ہو کر اپنے مسائل جمع کرتی ہیں اور خدمات کرتی ہیں۔ قدیم معاشرے میں اس طریقے کے ساتھ علم کی خدمت کرنا عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ تو جب ریاست کی سپورٹ کسی چیز کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتائج بہت غیر معمولی نکلتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے یہاں جو ادب پروان چڑھا، اس کو بھی مسلم حکمرانوں کے دور سے تقسیم کیا گیا، یعنی عباسی عہد کا ادب، اموی عہد کا ادب، اندلسی عہد کا ادب۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی چیزیں جو ہیں اس کو پری اور پوسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ادوار سے پہلے کیا تھا، یہ حکمران آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ یہی معاملہ ہمارے برصغیر میں ہے، ہر کوئی واقف ہے کہ وہ عربیت کے علوم ہوں یا فقہ کے علوم ہوں یا اصول فقہ کے ہوں یا حدیث کے ہوں، ہر سطح پر کوشش کی گئی مسلم حکمرانوں کی طرف سے کہ مسلمان چونکہ اپنے دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور مذہبی تعلیم ان کے لیے ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے، تو انہوں نے بھی اس کا احساس کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو ہماری امت کی پازیٹیو اسٹوریاں ہیں، وہ کہانیاں، وہ داستانیں जो हमें ये हिम्मत और सलाहियत देती है कि हमने जहाँ पर बहुत ज्यादा कोताहियां भी रही, कमजोरियां भी रही, हमने जदीद उलूम व फ़नून की तरफ इतना इल्तफात नहीं किया, इसके बावजूद हमारे यहाँ जो मजहबी उलूम व फ़नून थे उसकी तरफ उम्मत का बहर कैफ एक बहुत गैर मामूली रुझान रहा, और हमारे हुक्मरानों ने भी इसमें एक गैर मामूली किरदार अदा किया जो काबिल तहसीन है। हम अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि हमारा इल्म जो है वो एक पूरी तारीख रखता है, उस तारीख के अंदर उम्मत के और रोशन, जिंदा और जाविदा हस्तियां खड़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों के वसाइल को, अपनी तरजीहात में से मजहब को सर फहरिस्त रखा और इसके लिए खिदमात की। अगर हम ये करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें हमारी खिदमात का भी शुक्र अदा करेंगी और हमारी जो जदीद चीजें सामने आ रही हैं उसकी तरफ भी उनका इल्तफात होगा। एदे करीब के अंदर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम हुकूमतों में से सऊदी अरब की हुकूमत है, इस तरीके से कतर की हुकूमत है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत भी है और ईरान की हुकूमत है। इन सारी हुकूमतों ने रियासत की सतह पर जो जो हुकूमत आती रही उन्होंने ये कोशिश की कि जो दीनी उलूम है उनकी तरवीज में अपना हिस्सा डाला जाए। ऐसी जामियात बनी हैं जिनके जरिए तहकीक और इल्म के फरोग की कोशिश की गई है, ऐसे इदारे रियासत की सतह पे बने हैं जिनके जरिए मुसलमानों की मजहबी तालीम और तरबियत और उनके उलूम व फ़नून में बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। आज मैं जिस चीज़ का आपको तारुफ कराना चाहता हूँ वो एक सॉफ्टवेयर है, और हम ये जानते हैं कि जदीद दौर के अंदर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तूफान आया है, और मैं ये कहूँगा कि हर जगह एक सैले रवा की तरह उसने सबको बहा के ले गया है, तो उसमें हजारों की तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर सॉफ्टवेयर्स भी बने हैं मजहबी इल्म को पीडीएफ की शक्ल में या जदीद इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की शक्ल में सामने लाने की भी कोशिश की गई है। बहुत सारी इस तरह की इदारे भी बने हैं जो इनकी जमो तहकीक का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बहुत मुमताज काम जो है वो जवामे उल कलिम नामी इस हदीस के सॉफ्टवेयर में किया गया है। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर अब खोलता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है जवामे उल कलिम। इस सॉफ्टवेयर के पस मंजर के बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ। 1988 में एक कतर की बहुत मारूफ शख्सियत जो हैं उन्होंने, दरवेश फखरू उनका नाम था, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो एक मारूफ ताजिर भी हैं और कतर की जो हुकूमत है और शाही खानदान है उससे भी उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं। उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी कि हदीस का जो भी जखीरा दुनिया में मौजूद है उस जखीरे को एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में दुनिया के सामने लाया जाए। ये उनका एक, जिसको आप कहते हैं, उनका एक टारगेट था, उनकी एक ख्वाहिश थी, जिसे फिर उन्होंने उलमा के सामने रखा, हदीस के जो मुहक्किकीन हैं उनके सामने रखा और उनको बताया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो 1988 से लेकर सन 2011 तक कमोबेश 30-32 साल 350 से जायद जो हैं वो अहले इल्म उलमा जो हदीस के इल्म और फन से वाकिफ थे उन्होंने इस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया। यानी 30 साल का अरसा है जो इस सॉफ्टवेयर की तकमील में लगा है। सॉफ्टवेयर बनाने में तो शायद इतना अरसा ना लगा हो, लेकिन इसके पीछे जो मवाद है उसको जमा करना, उसको इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना और उसको सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करना, इस सिलसिले के अंदर एक बहुत बड़ा वक्त लगा है। और जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि हदीस का जो जखीरा मौजूद था उसको लाना तो कोई बहुत नया काम नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मखतूते थे, मखतूते यानी वो कागज के या चमड़े के या पत्तों के वो हिस्से जिन पर हाथ से हदीसें लिखी गई थी, और वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में थे, मुख्तलिफ आसारे करीमा के मराकज में पड़े हुए थे, जो अब से पहले मंजरेआम पर नहीं आए थे या जिनसे इस्तफादा अहले इल्म के लिए था, मुमकिन नहीं था। तो इस टीम ने 540 से जायद ऐसे मखतूतात जो पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आए थे उनको भी मुंतकिल किया सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में, और उन पर भी तहकीक की और उसको वो सामने लेकर आए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1400 से जायद मसादिर हैं हदीस के, यानी 1400 से जायद बराह रास्त हदीस की किताबें हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर जमा किया है, और जिनमें 540 के करीब वो मखतूतात हैं जो अब पहले सामने नहीं आए थे। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हदीस के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है, यानी इसके अंदर कोई और दूसरी चीज को पेश नजर नहीं रखा सॉफ्टवेयर बनाते हुए। तो इसकी जो अपीरेंस है वो आपको जैसे ही आप इसको खोलते हैं, मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ। देखें शायद पुराने लोग जिस वक्त किताब पढ़ते थे और किताबत का दौर था तो इसकी बहुत गैर मामूली अहमियत होती थी कि कातिब कैसा है, वो कैसे लिखता है, सफ़े का साइज कैसा है, पढ़ने में वो फॉन्ट आंखों को कितना भाता है, इसी तरह से किताब का वर्क कैसा है, किताब की जिल्द कैसी है, उसका गत्ता कैसा है, उसको पढ़ते हुए उसका सफ़ा पलटते हुए आपको क्या एहसास होता है। तो जो इल्म के तालिब इल्म होते हैं उनको इससे बहुत गैर मामूली उनसियत होती है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी किताब उनके हाथ में पकड़ा दें जो छवि भी अच्छी ना हो, जिसका खत भी अच्छा ना हो, जिसका रंग भी अच्छा ना हो, जिसका सफ़ा भी उस दर्जे की क्वालिटी का ना हो, तो वो कभी भी उनको अपनी गिरफ्त में नहीं लेती। क्योंकि इल्म के समंदर में जब आप जाते हैं तो फिर आप उससे यानी महजूज होते हैं, वो एक पूरी अलग दुनिया होती है। तो जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको एक बहुत खुशाइंद एहसास होता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको भी दिखाऊंगा। जब आप उसको खोलते हैं तो खोलने के बाद बेतहाशा वहां पर ब्लॉक से बने हुए हैं, आइकन से बने हुए हैं, लेकिन आप उससे फेमिलियर नहीं होते कि भाई ये क्या चीज मेरे सामने खुल गई है, और एक तरह से मुतवाहिश से हो जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में जिन्होंने सबसे पहले एहतमाम किया है वो ये कि ये खुलते ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। इस तरह आप देखें कि रंगों का जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर जो यहाँ पर एक तरह का डिजाइन पैदा किया गया, और पूरे सफ़े के ऊपर इब्तदा में आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, उम्मीद है ये आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर अर्ज है, बहस है, तकसीम मौजूई है, किरात मुतनव्विया है, तखरीज रसाइल है, ये सारे आइकन्स हैं। तो आप इसको खोलते ही एक तरह से इसकी दुनिया में दाखिल होने का कदम आगे बढ़ाते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का हम आगाज करते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे इस्तफादा हासिल किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जो आपको इससे पहले किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मुयस्सर नहीं आई है। देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर क्लिक किया है अरस के ऊपर, इसका मतलब है आप कोई चीज पेश करना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में आप तहकीक करना चाहते हैं, तो आप इसको खोलने के बाद सबसे पहले ये आइकन है अरस का जिसको आप क्लिक करेंगे। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूं अगर आपको, ये अरस का आइकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है बिदायत अल हदीस। आप अगर किसी हदीस को ढूंढना चाहते हैं तो अरस के ऑप्शन के बाद आपको उस हदीस का इब्तदाई हिस्सा डालना है जहां से वो हदीस शुरू हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने कोई हदीस फेसबुक पे पढ़ी है, कोई आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हुई है, कोई आपकी ईमेल में है, तो अब वहां पर आप देखेंगे कि यह हदीस शुरू कहाँ से हो रही है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, और उसके बाद का जो हिस्सा है इब्तदा का हिस्सा वो आप इसमें डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये एक हिस्सा इसमें डालता हूँ और मैं इसको देखता हूँ, ये हदीस का इब्तदाई हिस्सा है, ला यमूत रजुल मुस्लिमन इल्ला अदखलल्लाहु मकानन्नार यहूदियन और नसरानियन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान जब मरता है तो अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या एक नसरानी को जहन्नम में डाल देते हैं। अब ये हदीस का इब्तदाई हिस्सा था जो मैंने यहाँ पर डाला, तो उसके बाद इसने मुझे ये नतायज दिए। ये नतायज किस तरीके से आते हैं और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हदीस का जो पहला कॉलम है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम भी करता हूँ, कि इन्होंने लिखा है कि नौल हदीस, यानी आपने जो ये हदीस टुकड़ा डाला है और आप इसको ढूंढना चाहते हैं जखीरे हदीस में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप पहले ये बताएं कि आप ये जो हदीस आप ढूंढना चाहते हैं ये हदीस किस तरह की हदीस है अपनी नौयत के अतबार से, यानी क्या ये रिवायत है वो अल्लाह ताला का कोई कौल है, अल्लाह ताला से मंसूब है? अगर अल्लाह ताला से मंसूब है तो हम उस इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फिर वो रिवायतें ढूंढेगा जिसमें अल्लाह ताला इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। ये हदीस की एक इस्तलाह है और इसमें जब कोई बात अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके कही जाती है तो उसको कुदसी कहते हैं, हदीस कुदसी। तो वो फिर हदीस कुदसी के अंदर से हमारी जो रिवायत है वो ढूंढेगा। इसी तरीके से ये सात इसके मरफू का एक खाना है, आप इस पर भी क्लिक कर दें। तो मरफू का मतलब है कि जिस हदीस को की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई, जिस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया, ख्वाह उसकी सनद मुत्तसिल हो या ना हो, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है और आप चाहें तो दोनों पर क्लिक ना करें तो वो आपको इन दोनों के मजमुए के नतायज जो है वो दे देगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए कि इन्होंने आगे लिखा है कि ये चीज आप ढूंढ रहे हैं, आप जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की गई हैं रिवायात की, उसमें कुछ कौली रिवायतें हैं, कुछ फेली रिवायतें हैं, कुछ तकरीरी हैं, रसूलुल्लाह ने किसी मौके पर खामोशी अख्तियार की है, लोगों ने उसको अपना लिया है, कुछ आपकी जिंदगी आपकी आदात आपके खसाइस से मुतल्लिक शमाइल की रिवायतें हैं उनमें ढूंढना चाहते हैं, तो ये आपकी कैटेगरीज को यानी आपकी सर्च की जो ऑप्शन है उसको महदूद से महदूद करता चला जाएगा, जिसके नतीजे तक आप अपने हदफ तक आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी आपके सामने एक बहुत बड़ा नतीजा नहीं आ जाएगा इसमें आपको ढूंढना पड़े। तो अगर आप इस बात का इल्म रखते हैं तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को ले सकते हैं और उसके बाद आप सर्च जो है वो खोल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो आप ढूंढ रहे हैं रिवायत, इसके जो तुरुक हैं वो तुरुक की एक अलग तकसीम है, आप उसके जरिए से इसको ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गरीब पर क्लिक करते हैं, ये जो इस्तलाहात हैं ये सॉफ्टवेयर की अपनी इस्तलाहात हैं, यानी इस सॉफ्टवेयर के बनाने वालों के नज़दीक इन्होंने अपने मैनुअल में लिखा है कि ये इल्म की इस्तलाहात नहीं है बल्कि ये सॉफ्टवेयर की इस्तलाहात हैं। यहाँ ये गरीब से मुराद लेते हैं कि आप ऐसी रिवायत ढूंढें जो सिर्फ एक ही सहाबी से हो, आप अजीज पे क्लिक करते हैं तो इससे मुराद है ऐसी रिवायत ढूंढें जो दो सहाबा से हो, आप मशहूर पे क्लिक करते हैं तो इससे मुराद है ऐसी रिवायत हो जो 3 से लेकर 9 तक के सहाबा से जो है वो, आप इसमें अदद सेलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे वो रिवायत चाहिए है जिसमें ये जुमला जेर बहस हो लेकिन उसको 3 या 3 से ज्यादा सहाबा ने बयान किया, या फिर आप तमाम के तमाम जितने भी तुरुक हैं इस रिवायत के उसको देखना चाहते हैं तो फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे जमीन पर। इसी तरीके से आप देखिए सर्च के अंदर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि जो हदीस आप ढूंढ रहे हैं, ये जो आपने जुमला यहां पर लिखा है, आप ये चाहते हैं क्या जो नतीजा आपके सामने आए वो सिर्फ उन रिवायात पर मुश्तमिल हो जो हसन है या सही है, यानी अगर तो आपके पेश नजर ऐसी रिवायतें हैं जो हसन हो और सही हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो उसके तमाम रावी सिका हों, दयानतदार हों, उनका जो कुव्वत हाफजा है वो मुस्तहकम हो और उस हदीस में कोई शुजूज या कोई खराबी ना पाई जाती हो तो हम उसको सही हदीस कहते हैं। इस तरीके से जिस हदीस के रावी की हाफजे के एतबार से कुछ हदीस के दूसरे रावियों की निस्बत कमी हो उसको हम हसन रिवायत कहते हैं। इस तरीके से ज़ईफ का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी हदीस जिसमें वो सिफात पाई जाती हो जो हसन में नहीं होती तो वो ज़ईफ है। इसी तरीके से मौजू है यानी वो जो मनगढ़ंत किस्म की रिवायतें हैं जो लोगों ने मनसूख कर दी हैं, तो आप अगर मनफी काम करना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि भाई इस रिवायत को गलत किन लोगों ने प्रेजेंट किया है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आप पहले उस काम का जायजा ले सकते हैं। आप अगर तमाम चीजों को देखना चाहते हैं तो जमीन तुर्क कर सकते हैं और इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप ना अपनाएं। तो ये सर्च का एक इब्तदाई तरीका है जिसके जरिए से आप किसी भी रिवायत के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक रिवायत के अल्फाज डाले हैं और हमने उस पर इसको पेश किया है कि इसके बारे में जितने भी अखीरा अहादीस में रिवायतें दुनिया में पाई जाती हैं वो आप हमें बताएं कि क्या है। तो इन्होंने हमें बता दिया है कि इस रिवायत से मुतल्लक 93 बातें हैं जो 5 सहाबा से मुख्तलिफ किताबों में नकल हुई हैं। अब अगर हम इसके अंदर जाके देखना चाहते हैं, जायजा लेना चाहते हैं कि ये किस तरीके से लोगों ने, सहाबा ने इसको प्रेजेंट किया है, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमने इस पर क्लिक कर दिया। यहां पर एक एक हिस्टोरिकल बात जो आप तक पहुंची है रसूलुल्लाह से मंसूब, उसकी पूरी तारीख आपके सामने आ गई है। ये आप देखिए कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला बिन कैस हैं, उन्होंने इस रिवायत को बयान किया है, और 82 से जायद तरीक हैं जो मुख्तलिफ किताबों में हैं, मुख्तलिफ रावियों ने उनसे नकल की हैं। इसी तरीके से अनस बिन मालिक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे तरीक भी हैं। देखिए, हमने क्लिक नहीं किया था ज़ईफ़ और मौजू पर, तो उसने हमें इसके साथ ही निकाल के जो ज़ईफ़ हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मुनक़ते हैं, उनके अंदर नाम नहीं लिखे हुए, और ये एक पूरी कैटेगराइजेशन इसने कर दी है कि ये इस लिहाज से रिवायत है। तो हम इसमें मिसाल के तौर पर अंदर जाकर देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन कैस जो है ये क्या कहते हैं इस रिवायत के बारे में। तो आप ये देखिए कि जिस वक्त आप इसको खोलते हैं तो एक पूरा रिसर्च का, आप समझें, एक थीसिस, पूरा मवाद आपके सामने एक स्क्रीन में खुल जाता है। इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे, जिसको आप कहते हैं, गैर मामूली काम मुझे लगता है वो ये कि फाइलिंग का वो काम जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में मैनुअली आप करते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, शामिल है और भी हैं, आप जब उसमें कुछ चीज सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट्स निकाल के देता है, आप एक एक पर जाते हैं, उसका नीचे मतन आता है, फिर आप उसको कॉपी करते हैं और उसकी फाइल बनाते हैं, उसको जमा करते हैं। तो ये एक बहुत, जिसको आप कहते हैं, मशक्कत वाला काम है। 82 फाइलें आपने कॉपी करनी है, उनको एक जगह पर जमा कर। यहां पर आप देखिए तो इस रिवायत से मुतल्लिक ये सारी की सारी रिवायतें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस सफ़े को आप यहां से छोटा कर सकते हैं, इस तरह मैंने किया, और ये सारी रिवायतें उन सहाबी से एक ही जगह पर मुझे मिल रही हैं। तो मैं तरतीब से इनको पढ़ सकता हूं, मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा और मैं ये देखता जाऊंगा कि ये सहाबी जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस रिवायत के बारे में। इसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने यहां पर और तकसीमात लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर ये बताते हैं कि किस सहाबी से है ये रिवायत, उसके बाद किस किताब में है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसने उस किताब को डाला है उसमें, तो जो नंबरिंग है उस सॉफ्टवेयर की नंबरिंग मुख्तलिफ है जो किताब की ओरिजिनल नंबरिंग थी। तो इन्होंने दोनों नंबरिंग्स यहाँ पर दे दी है कि आप अगर सॉफ्टवेयर की नंबरिंग्स में देखना चाहते हैं तो उसका नंबर ये है, और अगर आप किताब की नंबरिंग में देखना चाहते हैं जो ओरिजिनल किताब छपी हुई है तो उसकी नंबरिंग ये है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक किताब है, मैं उसमें एक हदीस देखता हूँ और मैं अब उस हदीस के बारे में तहकीक करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक नंबर मौजूद है, तो मैं उस नंबर के जरिए से पहुंच सकता हूँ, तो उस वो नंबर भी मेरे लिए मुफीद है जो किताब में है, जो पूरी दुनिया में राइज है, और एक नया नंबर भी है जो सॉफ्टवेयर ने अपनी तरतीब से बनाया है। वो क्यों बनाया हुआ है मैं आगे चल के इसका भी इजहार करूंगा। इसी तरीके से जो इस किताब के मुसन्निफ हैं वो भी मौजूद हैं, और ये उनकी वफात की सनद है। आप ये देखिए कि जब आप सनद वफात पे क्लिक करते हैं तो ये आपको, आप इसमें ये ऑप्शन रखते हैं कि आप ये देखें कि सबसे पहले इसको किस शख्स ने बयान किया है, यानी आप ये देख लेते हैं कि अबू दाऊद त्यालसी जो हैं ये 204 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। आपने सनद वफात को ऐसे सेलेक्ट किया कि पहले वो रिवायतें सामने आए कि जिन लोगों की वफात पहले हुई है, यानी उन लोगों ने रिवायत पहले बयान की है। तो आपके सामने एक हिस्ट्री का काम ये भी आ जाता है कि इस रिवायत का एक दर्जे में आगाज जो है वो यहां से हुआ है, यानी ये पहली रिवायत है जो मुंतकिल हुई है, और फिर इस रिवायत को आगे लोगों ने ले लेकर मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है। फिर उसमें बहस है कि आप देखेंगे कि क्या वही रावी हैं या उनकी चेन मुख्तलिफ हो जाती है मुख्तलिफ किताबों में, लेकिन ये एक बहुत ही आला ऑप्शन है जिसके जरिए से आपको तरतीब मालूम होती है कि किस तरतीब से ये जो रिवायतों का सामने आना है, रसूलुल्लाह से मंसूब अकवाल को लोगों में आम होना है, वो पहले किस किताब में आई है। तो इसी तरीके से यहां पर उन्होंने किताब के बारे में बता दिया है, किताब जो है वो छपी भी मौजूद है या वो कोई मखतूता है, तो ये उन्होंने बता दिया है कि वो किताब जो है वो छपी भी मौजूद है। अब हम इस रिवायत पर क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि जब हमें ये सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये रिवायत यहाँ यहाँ पाई जाती है, ये उनकी उनके मसादिर हैं, इन इन किताबों में वो नकल हुई है, इसी तरीके से इन इन सहाबा ने उनको नकल किया है, अब हम देखते हैं कि इस रिवायत के बारे में मजीद हमारी क्या मदद करता है सॉफ्टवेयर। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया कि ये जो रिवायत आपने हमें निकाल के दी है, इस रिवायत को खोलिए, क्या बात है पूरी, और ताकि हम इसका जायजा लें और इसको हम देखें कि ये किस तरीके से बयान हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर रिवायत जो है वो आपके सामने खुल गई है, और इस रिवायत में सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी मतन को देखते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो मतन आपकी आंखों को भाए, यानी वो आपके लिए काबिले मुताला बन सके। तो बहुत सारे ऐसे, यानी आप साहिबान इल्म से पूछें तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो उनको बहुत हंट करते हैं, बहुत पसंद है, जिनको जिनको देखते ही उनकी तबीयत खुश हो जाती है, और उसमें फिर मतन की आंखों को जो कबूलियत है वो बहुत गैर मामूली होती है। तो इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन ये है कि जितने दस्तयाब शुदा अरबी के फॉन्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप जिस फॉन्ट में चाहें वो इसको रियल टाइम में यहीं पर सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। आप कि नज़र कमजोर है, आप मोटा पढ़ना चाहते हैं, हरूफ उसमें वाजे हों, आप वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आप उसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं जो आपके लिए काबिले मुताला हो, या आप ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल वाजे और साफ नजर आए, या ये जो चौकट्ठा सा यहाँ पर बना हुआ है इसमें फिट हो जाए, तो इस लिहाज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक फॉन्ट का साइज सेलेक्ट किया है, तो ये रिवायत अब मेरे सामने इस तरह खुल के आ गई, बिल्कुल वाजे आ गई। यहाँ पर आप देखिए कि इस रिवायत के अंदर, ये रिवायत हमारे सामने है, ये बताया जा रहा है मुसनद अबी दाऊद त्यालसी की एक किताब है, उसका ये जो हदीस का रकम नंबर है वो ये है, जो किताब में रकम नंबर है वो ये है। इसी तरीके से इसके शवाहिद कितने पाए जाते हैं और इसकी जब हम तखरीज करेंगे तो उसके नतायज कितने हैं, इन्होंने बताया कि 11 शवाहिद हैं और तखरीज कितनी है वो 82 के करीब। शवाहिद से मुराद ये जो रिवायत है, यही रिवायत इन साहिब से और कहाँ पाई जाती, इसी इन्हीं सहाबी से, ताकि हम ये मुताला करना चाहें कि जो सहाबी का अपना बयान है, ये बयान की क्या खुद ये कहीं पे तौजीह कर रहे हैं, कहीं खुद इन्होंने वजाहत कर दी है, कहीं खुद इन्होंने कोई इतलाक वाजे कर दिया है, कोई मकाम वाजे कर दिया है, किस मौके पर इन्होंने बात सुनी है, इस बात की कोई मजीद तफसील है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जो आदमी आपको ये बात बता रहा है तो उस आदमी ने कहीं और भी ये बात बताई हुई है, तो हम वहां जाकर देखें कि वो क्या कहता है। तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, मिसाल तौर पर शवाहिद, जब आपने शवाहिद में क्लिक किया, सॉरी यहाँ तखरीज में, तखरीज में जब आपने क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि उसी सहाबी से जो जो रिवायतें इस मजमून की पाई जाती हैं वो कौन सी हैं तखरीज के अंदर, और शवाहिद के अंदर यही रिवायत, यही मजमून बाकी दीगर सहाबा ने इसको अगर बयान किया है तो वो क्या है। इसके जरिए से आप देखिए कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को जब आप रखते हैं तो सबसे पहले उस आदमी की अपनी बातें, ये नीचे आपको नजर आ रही होंगी कि उस आदमी ने इसको मुख्तलिफ जगहों पर 11 से जायद 12 से जायद जगहों पर बयान किया है, उसका अपना बयान क्या है, उसमें क्या तगैयुरात वाकई हो गए हैं, वो किस तरीके से बात को आगे बढ़ा रहा है, कहीं पे मुख्तसर बता रहा है, कहीं पे जायद बता रहा है, और फिर जब आप उससे एक हतमी बात तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि उसके शवाहिद और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी बाकी सहाबा भी क्या इसकी बात की तायद कर रहे हैं। अगर तायद कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री को जब आप मुरतब करना शुरू करते हैं तो ईंट से ईंट, एक जिसको आप कहते हैं क्लू से दूसरा क्लू मिलना शुरू हो जाता है, कि आपने पहले एक चीज की तहकीक की, एक साहब की बात आपके हाथ लग गई, उनकी बात पूरी जगह पढ़ के एक नतीजा खर्च किया, अब आप उसके कंपैरिजन में जाते हैं और आप देखते हैं क्या इसकी तायद हो रही है। जब तायद होना शुरू होती है तो आप देखते हैं कि असल बात की तरफ पहुंचने का जो सफर है उसका आगाज हो गया। तो शवाहिद और तखरीज, ये दो ऑप्शन आपको यहां पर मिलते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक और ऑप्शन है, वो है माजिम, यानी डिक्शनरीज। बिलुमूम आप देखें कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आप कॉपी करते हैं, कोई लफ्ज आपको देखना है तो आपने कॉपी किया, या उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो आपको माना देता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है भी। तो इसमें इन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि आप जो हदीस आपके सामने है आप सिर्फ उसके लफ्ज पे क्लिक करें, या आपने यमूतू पे क्लिक किया। अब यमूतू पे क्लिक करने के बाद जब आपने पहले सेलेक्ट कर लिया डिक्शनरी को, तो इसने हमें बताया है कि ये इसकी जो है वो इल्म का, डिक्शनरी के इल्म का जखीरा है। और इसमें से आप जिस भी किताब में पढ़ना चाहें कि वो इस लफ्ज़ के बारे में क्या कहता है, तो सिंपल आपने एक क्लिक करना है और उस क्लिक से आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि नुमाइंदा जो डिक्शनरीज हैं वो यहाँ पर मुहैया की गई हैं, लेकिन बहुत सारी इसके अलावा भी अहम जो है वो डिक्शनरियाँ हैं जो इस वक्त इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन आपको लफ्ज़ के मानी तक पहुँचने में जो नुमाइंदा चीज़ें हैं जिसको उलमा हदीस के बाब में काबिल मुराजत समझते हैं, उसका यहाँ पर हमें जखीरा मिल जाता है। इसके बाद जो एक सबसे दिलचस्प चीज है, जो इस सॉफ्टवेयर का एक इम्तियाज है, वो है इसके अंदर मौजूद 7 लाख से जायद सनदों का रिकॉर्ड। ये जो इम्तियाज है इस वक्त तक मेरे इल्म की हद तक किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं पाया जाता। आपको मैं इसका एक अमली तौर पे दिखाता हूं कि ये कितनी गैर मामूली चीज है। देखिए यहां पर लिखा है अल हुकुम आल मतन, कि ये जो मतन मौजूद है हमारे सामने कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान जब मरता है तो अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी को या नसरानी को जहन्नम में डाल देते हैं। ये रिवायत जो आई है, इस रिवायत के ऊपर हुक्म क्या है? इन सबसे अहम चीज़ तो ये है ना कि हम ये देखें भाई ये सही भी है कि सही नहीं है। तो हुक्म के बारे में जो अहले इल्म इसके ऊपर हुक्म लगाते हैं ये क्या है? अब ये देखिए कि एक बहुत ही शानदार चीज जो आपके सामने आती है वो ये कि ये आपको इस रिवायत या इस जो हिस्टोरिकल एक बात बयान की जाती है इसका पूरा ओवरव्यू देती है। यहां पर ये देखिए ये बताती है कि ये जो रिवायत आपके सामने मौजूद है ये जहां जहां पाई जाती है दुनिया में उसके अंदर सिर्फ यानी 11% रिवायतें हैं जो सही के मयार को पूरा उतरती हैं। 11% रिवायतें। इसी तरीके से 36.3% रिवायतें हैं जो हसन के मयार को पूरा उतरती हैं। इसी तरीके से 33.1% रिवायतें हैं जो जयीफ के मयार के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो आप जब किसी रिवायत पर काम करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है कि जिस हिस्टोरिकल फैक्ट को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर 33% से ज्यादा गलत बातें मौजूद हैं। वो ऐसी बातें मौजूद हैं कि जिनके ऊपर तहकीक हो चुकी है कि उनको बताने वाले जो थे वो ठीक नहीं थे या उन्होंने ठीक बात रसूलुल्लाह की तरफ मनसूब नहीं की। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि जिस हदीस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने किन किन पहलुओं पर गौर करना है। फिर आपने देखना है कि ज़ईफ़ रिवायत है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ईफ़ रिवायतों में पाई जा रही हैं और उन पर उलमा ज़ईफ़ का हुक्म लगा रहे हैं और वो कहीं कहीं हसन में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो कहीं कहीं सही में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो क्या वजह है कि एक गलत बात रिवायत के अंदर आ जाती है? तो इसका एक पूरा क्ल्यू जो है वो आपको इस चार्ट से मिल जाता है। तो आप हर हर रिवायत के बारे में इस तरीके का चार्ट जो है वो देख सकते हैं। ये इनकी एक बहुत ही गैर मामूली मेहनत है कि इन्होंने इतना बड़ा मवाद सनदों का उसको ना सिर्फ ये कि किताबों से निकाल के कंप्यूटर में डाला, ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर में डाला बल्कि उनको इस तरतीब से मुरतब किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आपको ये बताते हैं कि ये रावी जो बात बयान कर रहा है। मैं आगे चल के आपको एक और दिलचस्प चीज बताऊंगा कि जो रावी का एक पूरा चार्ट आता है कि रिवायत शुरू कहाँ से हो रही है, कैसे आगे पहुंच रही है, वो भी आपको ये बताएगा कि वही रावी उस दौर के अंदर और कहाँ कहाँ रिवायत कर रहा है या उनसे और कौन कौन रिवायत ले रहे हैं। तो इससे आप उसकी दीगर बातों तक पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही गैर मामूली और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर ये जो चीजें मौजूद हैं जो भी इसकी सनदों का काम सामने आया उस पर मुहक्किकीन ने उसका जायजा लिया। इस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था कि 350 से जायद मुहक्किक उलमा हदीस के उन्होंने सब काम का जायजा लिया और फिर ये बताया कि ये जो हदीस इस वक्त हमने सेलेक्ट की हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये हसन ली सही ली गैरी है, यानी ये एक हसन हदीस है और ये बिल्कुल काबिल कबूल हदीस है। इसके एक रावी के हाफजा जो है वो बाकी रावियों के नस्बत थोड़ा सा कमजोर है लेकिन ये बिल्कुल ठीक हदीस है, यही रसूलुल्लाह ने बयान की थी और यही हम तक पहुंची है। अगला ऑप्शन यहां पर है तकवीब। आप देखना चाहते हैं कि जो रिवायत आपके सामने है, इस रिवायत को इस किताब में जो बयान किया गया है मुस्नद अबी दाऊद तियालसी में, उसको किस बाब के तहत बयान किया गया है। तो गोया आप हदीस से उठकर बराह रास्त उसके मस्तर पर एक क्लिक से चले जाते हैं और आप ये देख लेते हैं कि ये किस उन्वान के तहत की रिवायत लाई गई है। क्या ये कयामत के अहवाल के तहत लाई गई है, क्या ये शिफात के अहकाम के तहत लाई गई है। तो इससे भी आपको जो मुसन्निफ है उसका फहम मालूम होता है कि वो इस रिवायत को कहाँ प्लेस करना चाहता है। तो जब आप खोलते हैं तो यहीं पर नीचे ये खुल जाती है और फिर आप देखते हैं कि किस बाब में मौजूद है। इसी तरीके से आप किताब खोल के पढ़ना चाहते हैं कि इस किताब के आगे क्या रिवायतें जिक्र हैं, पीछे क्या रिवायतें जिक्र हैं। बिलमूम हमारे मुहक्किक जो हदीस के उलमा हैं वो एक जगह पर जमा करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसके आगे पीछे कौन कौन सी रिवायतें हैं। तो ये सफ़ा जो है यहाँ खुल जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए ये ऑप्शन मौजूद है जब किताब खुलती है कि आप इसको जिस साइज में चाहें पढ़ना चाहें, आप इसको किताब की सूरत में पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से खुल जाएगी। फिर ये जो किताब है, चूंकि इस किताब का आपने रेफरेंस देना है, ये किताब कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ देखिए बिताखतल किताब, यानी इस किताब का अपना जो कवर है वो इन्होंने यहाँ पर उसको कॉपी कर दिया। यानी ये जिस किताब से उन्होंने रिवायत ली है वो किताब छपी हुई मौजूद है, मतबू है, और वो कहाँ से छपी है उसके पब्लिशर का नाम यहाँ मौजूद है। और इसको अगर आप सेव करना चाहें तो यहीं से आप हिफ्ज करें, तो ये जो मालूम है वो वर्ड की एक फाइल में आपने जहां पर सेलेक्ट की होगी वहां पर वो सेफ हो जाएगी। तो एक ऑप्शन आखिरी जो है वो यहाँ पर रह गया था, ये हमने पढ़ लिया कि बिताका जो जो किताब का कवर है हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये रिवायत हमारे सामने भी खुली हुई है। हमने इस बात का भी जायजा लिया था कि मजमूई तौर पे जो ये रिवायत मौजूद है तो उसमें सनद की क्या सूरत हाल है, कितने फीसद लोग सही हैं, कितने फीसद गलत हैं। लेकिन अब हम मजमूई काम को छोड़कर इस मौजूद रिवायत की तहकीक करना चाहते हैं, यानी जानना चाहते हैं कि ये जो रिवायत हमारे सामने मौजूद है इसकी सनद क्या है, कहाँ से आती है ये रिवायत, कौन इसको बयान कर रहा है। तो देखिए यहीं पर मौजूद है इला इल्म दिराया, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर ये आपको इस रिवायत की सनद का जो चार्ट है वो खोल के देते हैं। यहाँ देखिए आपको ये बता रहा है कि ये अब्दुल्ला बिन कैस ये सहाबी हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे अब्दुल्ला बिन कैस पे, तो ये आपको बता देगा कि ये कौन थे। अब्दुल्ला बिन कैस सहाबी थे, ये 50 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, इनकी उम्र 63 साल थी, इनकी कुनियत अलअशरी है, इनको अबू मूसा के नाम से भी याद किया जाता है। ये सारी चीजें इनके मुतल्लिक यहाँ पर उसने बता दी है। तो ये सहाबी हैं, इनसे इन साहिब ने सुना, इनसे इन साहिब ने सुना, इनसे इन साहिब ने सुना, उनके नाम मौजूद हैं और उनके नाम के साथ आखिर में आपको ये, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको बता देगा कि ये इन सब हजरात के जरिए से मुस्नद अबी दाऊद में ये रिवायत आई है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ये जितने भी रावी हैं आपको नजर आ रहे होंगे, मैं उसको जूम भी करता हूँ, ये इनका जो ये बॉक्स है इसमें कलर हुआ हुआ है। तो क्या ये महज कोई जीनत के लिए इन्होंने किया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके पीछे पूरी साइंस है। यहाँ इन्होंने लिखा अलवान, ये जो रंग आपको नजर आ रहे हैं इनका क्या मतलब है। तो ये बताते हैं कि जब आप चार्ट खोलते हैं तो चार्ट के अंदर ही आपको ये पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर तो रंग ये है तो इसका मतलब ये रावी बिल्कुल सिखा है। अगर यहीं पर आपको अंदाजा हो रहा है कि ये रंग पीला है तो ये रावी जो है वो हसन दर्जे का है। अगर ये उससे मुख्तलिफ रंग है तो ज़ईफ है, नीला है, तो इन रंगों के जरिए जैसे ही आप रिवायत को खोलते हैं तो एक रिवायत का ओवरव्यू, सनद के पीछे क्या सूरत हाल है, वो खुल के एक मुरतब शक्ल में आपके सामने जो है वो आ जाती है। इसी तरीके से हुक्म अल मतन, इस रिवायत के बारे में जो इस वक्त मौजूद है जवामुल कलम के, जो कलम के जो मुहक्किकीन है उनका क्या कहना है, उन्होंने जब इस पे गौर किया, इसके रावियों के बारे में देखा, इसके शवाहिद पे गौर किया, तो उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि इस्नादुहु मुत्तसिल व रिजालुहु सिकात, उनके नजदीक ये बिल्कुल ठीक रिवायत है और इस रिवायत को लेने में कोई जो है वो मसला नहीं है। आप चाहें तो इस रिवायत को इसके साथ ऊपर भी यहाँ पर खोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम जो सनद के लिहाज से आपको ओवरव्यू देता है। अब मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो एक रावी यहां पर आए हैं जिसको इन्होंने कलर करके सिका बयान किया है, तो मैं ये देखूं और तहकीक करूं कि ये कौन रावी है और किसने इसको सिका करार दिया है और ये कहाँ पाया जाता था और इसके शुयूख कौन है, इसके तलामीज़ कौन है, इस पर जरा उतादील के उलमा क्या कहते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इस रावी के ऊपर। जब मैंने इस रावी के ऊपर क्लिक किया तो देखिए एक नई फाइल यहाँ पर खुल के आपके सामने आ गई। मैं फिर अर्ज करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी जाजिब है कि वो आपकी आंख को भाती है। यहाँ यूं नहीं है कि एक एक स्क्रीन थी वहां पर एक और विंडो खुल गई है जिसको आपने नीचे करना है, नहीं, मौजूद विंडो के ऊपर एक विंडो खुली है। अब आपके सामने ये रावी का नाम यहाँ पर आ रहा है और यहाँ उसकी सारी तफसील आ रही है। आप ये देखना चाहते हैं कि जरो तादील के उलमा इसके ऊपर इनके बारे में क्या कहते हैं। तो जो नुमाइंदा किताबें हैं, जो नुमाइंदा अफराद हैं, उनका एक खुलासा, उनका एक इस्तकसा वो आपके सामने आ जाता है कि यहाँ पर इस रावी के बारे में जो उलमाए जरो तादील की राय है वो यहाँ पर सारी की सारी मौजूद है। वो क्या कहते हैं, इनके ऊपर हुक्म क्या लगाते हैं, ये यहाँ पर ये आ गए कि ये जो हैं, मिसाल के तौर पर अबू हातिम इनके बारे में कहते हैं कि ये बहुत सिखा रावी हैं। ईसा साहिब कहते हैं ये भी उनके नजदीक भी ये काबिल इतना है। इसी तरीके से तो ये पूरा इब्न हजर जो है वो उनके बारे में लिखते हैं। फिर अगर वो कोई तफसील लिखते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी तफसील जो उनकी किताब में मौजूद है, जिसके लिए आपने वो किताब ढूंढनी थी, उसमें रावी ढूंढना था, उस रावी के बारे में इमाम बुखारी का तबसरा ढूंढना था, और उसको आप यहाँ पर पा लेते हैं आसानी से और आपको एक अंदाजा हो जाता है। इस तरीके से आप देखिए कि इसके तलामिजा कौन है, कौन है जिन्होंने इनसे रिवायत ली है, इन साहिब से। तो ये उनकी फहरिस्त कि इन साहिब से कमोबेश 176 लोगों ने मजीद आगे रिवायतें की हैं। इनके शुयूख कौन है, ये खुद किन से रिवायतें ले रहे हैं, तो उसकी एक पूरी तफसील यहाँ पर आ जाती है। और जो जो शख्स यहाँ पर आ रहा है उसका नसब क्या था, उसको किस नाम से पुकारा जाता था, उससे कितनी रिवायतें मरवी हैं, यानी इनके जो शुयूख हैं उन्होंने इनको जो रिवायतें दी हैं वो खुद कितनी रिवायतें बयान कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर एक पूरी तफसील जो है वो आपके सामने आ जाती है। मैं यहाँ पर एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चीज सामने आपके मौजूद है ये किस कदर गैर मामूली है, इसका अंदाजा सिर्फ उस वक्त होता है कि जिस वक्त आपको रिवायात के अंदर कोई ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको आप समझ नहीं सक रहे होते कि भाई ये बात कैसे रिवायत में आ गई। तो फिर आप ये देखते हैं कि जो रावी इसको बयान कर रहा है वो जिस शेख से ये रिवायत ले रहा है, मिसाल के तौर पर ये साहिब थे जिनके बारे में हमने देखा और ये इनके शेख हैं, तो हम इसकी तहकीक करते हैं कि इनके शेख भी ये रिवायत बयान कर रहे हैं, हमें मालूम होता है हाँ कर रहे हैं, तो हम उसमें जाकर देखते हैं कि जो रिवायत इनके शेख बयान कर रहे हैं उसमें तो वो इजाफा मौजूद ही नहीं है, और ये साहिब अपने शेख से रिवायत ले रहे हैं, तो ये इजाफा आया तो आखिर कहाँ से आया। तो फिर उसके बाद आपको जो क्लू है वो पूरा का पूरा इस नक्शे से मिलता है। आप देखते हैं कि शेख ने कहीं बयान की थी, यानी ये बहुत सादा फितरी चीज है, मुझे किसी ने आकर कोई बात बताई है और आप उस बात की तहकीक करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तहकीक मैंने जवाद साहब से सुनी थी, तो आप जाते हैं जवाद साहब के पास और उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं भाई मैंने तो इसको यूं बयान किया था, तो अब मेरी बात में जो कुछ कमी था इजाफा था वो मुतहक्कक हो गया कि इजाफा मेरे यहां से हुआ है। तो फिर आप उसकी फर्दर तहकीक करते हैं, मैं कुछ इसकी मिसालें भी यहाँ पर पेश करूंगा कि किस तरीके से ये इल्म हदीस के अंदर सही रिवायत तक पहुंचने में और जो गलत इजाफे हैं उनकी तनकी में किस कदर काबिले, यानी इतना मुफीद और काबिले सताइश काम यहाँ आपके सामने आता है। तो ये सनद के हवाले से जो चीज थी वो मैं आपको, इस तरीके से आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये वर्ड की फाइल में पूरी की पूरी चेन जो है रावियों की वो कॉपी हो जाएगी। एक और चीज जो यहाँ पर मौजूद है वो है शरा। मैं मिसाल तौर पर हमने ये रिवायत ली और हम देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ शारहीन हैं उनका नुक्ता नजर क्या है। तो ये हमें बताया गया कि भाई इस रिवायत के बारे में इनके पास इस वक्त कोई शरा जो है वो मौजूद नहीं है। हम कोई और देखते हैं कि क्या किसी और रिवायत के बारे में यहाँ पर शुरुआत मौजूद है। जवानुल कलीम जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मैं यह करना चाहूंगा कि शुरुआत की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद नहीं है, गालिबन चूंकि इसके अपने ऊपर तहकीक का काम उलमा ने किया, इसकी सनद पर हुक्म लगाया, इसके मतन की तनकी की, उसको मुरतब किया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा, यानी शुरुआत यहाँ पर सिर्फ नुमाइंदा किताबों की है। मसलन आपको बुखारी की शरह मिल जाएगी, मुस्लिम की शरह मिल जाएगी, और मेरा ख्याल एक दो और किताबों की शरह जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि हदीस के बाब में मौजूदा दौर में भी और इससे पहले भी उसकी तशरीह के हवाले से बहुत गैर मामूली काम हुआ है। तो शुरुआत के बाद में ये सॉफ्टवेयर आपकी शायद उस तरीके से मदद ना कर सके जो बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि इस हदीस के बारे में नासिरुद्दीन अल्बानी का क्या कहना है, यानी इल्म हदीस का एक बहुत मारूफ नाम, उनका गैर मामूली काम है, सही इब्न हब्बान पे भी है, बुखारी पर भी है, उन्हीं की किताब अदबुल मुफरद पर भी है, इसी तरीके से शुएब अरनऊत हैं, बहुत ही गैर मामूली उनका तहकीकी काम मुस्नद अहमद पर है, सही इब्न हब्बान पर है, सुनन अबी दाऊद पर है, इब्न माजा पर है, फिर बशार आवाद हैं, उन्होंने काम किया है तहजीबुल कमाल, सनदों के ऊपर उनकी तहकीक अलग मौजूद है, फिर मुस्नद अहमद के उन्होंने मतून की तनकी की है, हुसैन सलीम असद हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर तहकीक की है। तो हमारे बरेसगीर में बहुत सारे उलमा साहिबुर्रहमान आजमी साहिब हैं, उनकी सही इब्न हुजैमा पर तहकीक है, इसी तरीके से मौजूदा दौर के अंदर एक बहुत ही गैर मामूली आलिम अब्दुल्ला आजमी साहब, उनका एक बहुत जामे, तो शुरुआत की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और उसके अंदर किसी रिवायत के बारे में इल्म उलमा जो है वो क्या कहते हैं, ये एक बहुत जिसको आप कहते हैं वसी मैदान। तो ये सॉफ्टवेयर की यहाँ पर मैं आपको एक लिमिटेशन बताना चाहूंगा कि शुरुआत में वो आपकी इस जगह पर मदद नहीं करता। आप ये कर सकते हैं जब आपके सामने मतन आ गया तो आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद दूसरे सॉफ्टवेयर में जहां पर वो सारी शुरुआत और किताबें मौजूद हैं वहां पर आप उसको सर्च करें, तो आपके सामने जो है वो जो उनका नुक्ता नजर है वो आपके सामने वाजे होके आ जाएगा। तो ये हमने देखा है इस वक्त अरस करके, जब आप किसी रिवायत को देखते हैं तो वो किस तरीके से, मैं यहाँ पर इस ऑप्शन के खात्मे के बाद अगली विंडो पे जाऊंगा, तो एक मिसाल आपको मैं देता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पे आपके देखिए कि ये रिवायत थी, यानी इन जदीद तहकीक के जराए की वजह से कैसे हम सही बात तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, उसकी हम एक अमली डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ करते हैं। ये रिवायत जो है ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ये कोई किसी आम आम से मुराद गैर मारूफ किताब की नहीं है, बल्कि हदीस की किताबों में जो सबसे अव्वल के दर्जे की किताब है उसकी रिवायत है, और आपको ये रिवायत हर जगह मिलेगी। मैंने जब इस रिवायत पर तहकीक की तो मैंने भी इसको एक जगह पर लिखा हुआ पाया, फेसबुक के ऊपर किसी ने इसको लिखा था कि सही मुस्लिम की रिवायत है, और जैसे ही आप सही मुस्लिम का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता है कि उसकी चूंकि इतनी तहकीक हो चुकी है तो सही रिवायत होगी। कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान मरता है तो अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या नसरानी को जहन्नम में डाल देते हैं। तब सुनते ही ये रिवायत आप सोचते हैं कि ये क्या बात है, यानी ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। कुरान मजीद कहता है कि वला तजिरु वाजिरतन वजर अखरा, किसी और पर किसी का बोझ नहीं डाला जाएगा, जो जो कमाएगा उसी का उसको नतीजा मिलेगा, और जन्नत और जहन्नम का पूरा क्राइटेरिया है जो अल्लाह ने अपनी किताब में अल्लाह के रसूल ने उसको बयान किया है। तो ये रिवायत क्यों एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात बता रही है, तो हमने इस रिवायत को कॉपी करके यहाँ पर अर्ज में डाल दिया। तो ये सॉफ्टवेयर ने हमें बताया कि देखिए आपके सामने जो रिवायत है इसको 5 सहाबा ने बयान किया है, 93 के करीब जगहों पर ये आई है, यानी 93 बातें हैं रसूलुल्लाह से मंसूब जिसका जायजा लेना है आपने, और अब देखना है कि असल बात क्या थी। तो देखिए हमने इसकी तहकीक की, हमने इस पर क्लिक किया, और एक एक सहाबी मिसाल तौर पर अब्दुल्ला बिन कैस है, हमने इस पर क्लिक किया, अब्दुल्ला बिन कैस से जब ये बात पहली दफा सामने आई हमने इसको सिलेक्ट किया, उस वक्त ये बात क्या थी, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई, और फिर पहुंचते पहुंचते ये बात क्या थी असल में, क्या से क्या हो गई, ये हमें इसी के अंदर मौजूद एक रिवायत ने बता दिया। ये देखिए यहाँ पर एक रिवायत है जो इन्हीं सहाबी से मौजूद है, और इसकी सनद भी हम देख लेते हैं इसी वक्त रियल टाइम में कि भाई सनद क्या है, सनद भी बिल्कुल ठीक है, सनद में भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो रिवायत है कि जैसे ही कोई बंदा मरता है अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या नसरानी को जहन्नम में डाल देते हैं, ये असल रिवायत क्या थी, तो हमने इस असल रिवायत को इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ढूंढा, और ये वो रिवायत है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसे बातें जो मंसूब करते हैं लोग वो मुख्तलिफ हो जाती हैं असल बात से। देखिए, अबू बुरदा अपने वालिद अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह से रिवायत करते हैं, पिछली रिवायत आपके जहन में रहे, पिछली रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है और उसका तर्जुमा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि वो आपके जहन में रहे। ये है वो रिवायत, हर मुसलमान जो दुनिया से रुखसत होता है अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या नसरानी को जहन्नम में डाल देता है। ये रिवायत है सही मुस्लिम की। जब हमने इस पर तहकीक की तो इस सॉफ्टवेयर ने हमें ये बताया कि भाई इसके जो मुख्तलिफ तुरुक हैं उनके अंदर देखो क्या बात बयान हो रही है। तो वो जो बात थी हमने उसको दरियाफ्त की। वो रिवायत क्या है? अबू बुरदा अपने वालिद अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत जिसमें मेरी बेसत हुई है वो उम्मत है कि उस पर बड़ी रहमत की गई है। ये उम्मत, हाजिल उम्मा के अल्फाज हैं इस रिवायत में। और ये रिवायत हमने बनाई नहीं है, ये रिवायत जखीरे अहादीस के अंदर मौजूद है जिसको हमने सिर्फ दरियाफ्त किया, जो दबी हुई थी, जो सामने नहीं आ रही थी, जिसको लोगों ने वो अहमियत नहीं दी। तो ये बता रही है कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये उम्मत यानी जिसमें मेरी बेइज्जत, यानी कौन, यानी इससे मुराद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बनी इस्माइल है, जिनको यहूद व नसारा को जिन्होंने बराह रास्त मुखातब किया। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये उम्मत, उम्मतुन मरहूमतुन, ये वो उम्मत है कि इस पर बड़ी रहमत हुई है। आगे फरमाते हैं, इजा कान यौमुल कियामत दुफिया इला कुल्ली रजुलिन मिनहुम रजुलन मिन अहलि जिम्मा, इस पर आजाब, अच्छा ये देखिए, आजाबुहा बिअइदीहा, इस पर आजाब इन्हीं के हाथों से आएगा। अब ये रिवायत के अंदर अल्फाज मौजूद है, हमने नहीं डाले, यानी क्या मतलब है? ये वही बात है जो सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बयान किया, युअज्जिबुहुमुल्लाहु बिअइदीकुम, कि इन्हीं के हाथों से आजाब दिया जाएगा जो इनके सामने लोग मौजूद हैं जिन पर रसूलुल्लाह ने इत्मामे हुज्जत कर दिया है। फिर आगे क्या कहती है रिवायत, फिर जब कयामत का दिन होगा तो वहां भी इनके अहले जिम्मा या अहले शिर्क, किनके अहले जिम्मा और किनके अहले शिर्क, के यहूद और नसारा जो हमने मुस्लिम की रिवायत में पढ़ा था मुतलक जिक्र है, इससे मुराद कौन है? इससे मुराद जमाने रिसालत के यहूद और नसारा है। फिर जब कयामत का दिन होगा तो इनके अहले जिम्मा और इनके अहले शिर्क में से हर शख्स को इन्हीं में से किसी के हवाले किया जाएगा, किन्हीं में से जो रसूलुल्लाह के अहद में मुसलमान मौजूद हैं, और कहा जाएगा ये जहन्नुम से तुम्हारा फिदिया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस तरह दुनिया में अजाब के लिए इनके हवाले किया गया था मुसलमानों के, जो रसूलुल्लाह के अहद में मौजूद थे, उनके हाथों से अजाब आया था, तो अब कयामत में भी उन्हीं के हवाले किए जाएंगे। यानी इस लिहाज से फिदिया है कि ये अजाब को जो हुक्म तुम्हें दिया गया था इसको नाफिज करने से इनकार करते तो तुम जहन्नम में चले जाते, अब ये जहन्नम में जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो रिवायत सामने थी उसका मफहूम क्या था, और जो रिवायत तहकीक के नतीजे में सामने आई उसका मफहूम किस कदर मुख्तलिफ है। और हमारे मैं जब देखता हूँ तो आप ये देखिए कि ये महज आपके सामने कुछ सॉफ्टवेयर खुला हुआ है इस पर, लेकिन इसके असरात कितने दूरस हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक बात है जो पूरी दुनिया में मारूफ की जा रही है, और आपने जो बात फरमाई है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो लोगों में मारूफ है। तो ये एक अमली तौर पर मैंने आपको एक रिवायत का बताया। तो ये मैंने आपसे अर्ज किया कि शुरू के बारे में इतना ज्यादा इस सॉफ्टवेयर में चीजें नहीं मिलती। इसी तरीके से एक और मुख्तसरन मैं आपको दिलचस्प चीज बताना चाहता हूँ, अरज ही के ऑप्शन में गई, इस वक्त हम सिर्फ एक पहले ऑप्शन के अंदर है, यहाँ पर अरज हदीस का ऑप्शन था क्योंकि हदीस का जुमला डाले, यहाँ दूसरा ऑप्शन है सहाबा के एतबार से आप चीज को ढूंढें। अब आप ये देखते हैं मिसाल के तौर पर, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर इन्होंने काम किया है कि आप ऐसे सहाबी के बारे में ढूंढना चाहते हैं जो बसरा में रहते थे, यानी वो बसरा में रहते थे, या आप ऐसे सहाबी की कोई रिवायत ढूंढना चाह रहे हैं जिनकी वफात अफ्रीका के जंगलात में हुई थी, या आप किसी ऐसे सहाबी के बारे में ढूंढना चाह रहे हैं जो कबीला बनी तमीम से थे, तो आप कबाइल के लिहाज से सर्च करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कबाइल के लिहाज से जो तकसीम की गई है कि कौन से सहाबी किस कबीले से थे। अभी देखिए, गफ्फारी, कितने सहाबा थे जो गफ्फारी कहलाते थे? 41 के करीब सहाबा थे। इनसे जो रिवायतें हैं वो रिवायतें जो आई हैं वो 5383 जो है, 43 जो है वो रिवायतें हैं। इसी तरीके से आप देखें दूसी हैं या अलाशरी हैं या अशियाई हैं, ये सारे कबाइल यहाँ पर मौजूद हैं। और इस लिहाज से आप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक रिवायत आई और आप ये देखते हैं कि कबीले बनी तमीम के किसी सहाबा की ये रिवायत है और उसमें कोई बात बयान की गई है, तो आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के गिर्द पेश में मौजूद, जाहरी बात है जब वो एक कबीले में मौजूद हैं तो उसी कबीले में क्या कोई दूसरा सहाबी भी रिवायत कर रहा है? अगर कर रहा है तो आप उसको कंपैरिजन में लेकर जाएं, देखें कि एक ही जगह, एक ही इलाका, एक ही पस मंजर से मौजूद लोग क्या मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने क्लिक किया इसके ऊपर कि ये जो 41 सहाबा हैं इनके नाम बताएं मुझे कौन है, तो इन्होंने ये नाम बता दिया आपको सर, और इन नामों के बाद ही आपको साथ साथ बता रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि इनकी से रिवायतें कौन सी हैं, आप ये देखिए कि आपने क्लिक किया तो इन सहाबा से जो आपने कबीले के लिहाज से सर्च किया था इनकी रिवायतें आपके सामने खुल के आ गई हैं। इसको आप यूँ खोल सकते हैं, सारी रिवायतों का पूरा जखीरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आप इसको फिर साल के लिहाज से तरतीब दें, रावी के लिहाज से तरतीब दें, जो चाहें इसमें आप कर सकते हैं। अब मिसाल तौर पर आप ये देखना चाहते हैं कि बहरीन के अंदर जो सहाबा मौजूद थे वो कितने थे, तो आपके सामने ये आ जाता है कि वो 4 सहाबा थे, और फिर आप उनको खोलते हैं कौन थे उनके नाम। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली तकसीम जो इन्होंने यहाँ पर की है, ये आपको हिस्ट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो मकान की कितनी अहमियत होती है, रिवायत कहाँ से सामने आ रही है, उस मकान पे क्या हालात हैं उसके क्या, ये अगर आपको मालूम हो तो रिवायत के इतलाकात को वाजे करने में बहुत आपको आसानी होती है। यानी आपको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ खैबर के रहने वाले एक साहबी, वो एक रिवायत कर रहे हैं, तो आपको पता है कि खैबर किसका इलाका है, यहूद का इलाका है, तो वहां पर जो बात की जा रही है वो किसको पेश नजर रख के की जा रही है, तो इससे एक बिल्कुल दूसरा जाविया नजर फहमे हदीस में सामने आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहस का ऑप्शन है, सबसे ज्यादा मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूँ, और इस ऑप्शन के अंदर आप कोई भी लफ्ज आपने कहीं भी पढ़ा है उसको इसमें डाल सकते हैं। आप मिसाल तौर पर सलाद का लफ्ज डाल दें, आप इसमें दहिया कलबी का लफ्ज डाल दें, आप इसमें सौम का लफ्ज डाल दें, आपने कोई रिवायत सुनी है उसके कुछ एक एक आधा अल्फाज लफ्ज आपको याद, वो आप इसमें, इसमें वो पाबंदी नहीं है जो यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज रह गई जो मैं आपको बताना चाहता था, देखिए जब आपने अर्ज किया तो खुद सॉफ्टवेयर ने एक तकसीम बनाई हुई है कि जितनी रिवायतें मौजूद हैं सॉफ्टवेयर में कमोबेश 60,000 से जायद, उनको इसने तरतीब दिया हुआ है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक रिवायत है कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो दोजख में जलेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत। तो अब जितनी रिवायतें मौजूद हैं उस पर मुहक्किकीन ने पहले से एक काम किया हुआ है, उस पर मैंने और आपने कोई काम नहीं करना, और उन्होंने उनको एक जगह जमा कर दिया है। अभी देखिए कि ये बता रहे हैं हमें कि 1400 से ज्यादा रिवायतें हैं 68 सहाबा से, यही मजमून उसमें जेरे बहस है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा जखीरा जो है वो उस रिवायत का आ जाता है। तो इन्होंने जितनी रिवायतें इनके पास मौजूद हैं उनके ऊपर ये काम पहले से कर दिया। ये देखिए आप क्या शानदार काम, कि अभी रिवायत आपके सामने आई है तो अभी आपको बता रही है इन इन सहाबा से मौजूद है, एक पे क्लिक करेंगे तो उस सहाबी से सारी, तो ये काम इन्होंने अपनी एक तकसीम से भी पहले से इसमें किया हुआ है। अब हम आगे बहस के ऊपर, यहां मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप एक ऑप्शन डालें, कोई भी लफ्ज डालें, इसमें भी यहाँ पर मौजूद है, आप रकम के लिहाज से डालना चाहते हैं, आपने कोई तरकीब डाली है उसमें आपके पास ऑप्शन है मुततालिया मुतनासिरा, आप ये चाहते हैं कि इससे मिलती जुलती बात भी हो उसको भी सर्च करें, या आप चाहते हैं कि यही इबारत जो मैंने दी है यही सर्च होकर सिर्फ सामने आए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इबारत के अंदर अगर कोई ऐसे अल्फाज हरफे लीन मौजूद है, वाव है, अलिफ है, या है, आप चाहते हैं कि वो हट जाए और असल इबारत वाजे हो, ये ना हो कि सर्च करना चाहें तो एक वाओ की कमी की वजह से वो इबारत ही आपकी पकड़ में ना आए, या कोई हमजा आपने गलत लगा दिया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर वही ऑप्शन मौजूद है कि किस दर्जे की रिवायत आप देख मुनकते देखना चाहते हैं, मौकूफ रिवायत है जो सहाबी तक चली जाती है, मरफू है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, उस लिहाज से आप इसको ढूंढें। यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज है कि बिलउमूम सर्च जो ये कर रहा है 1400 मसादिर में कर रहा है, लेकिन आप फोकस्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक फहरिस्त किताबों की जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक फहरिस्त आ जाएगी, जिसके बाद आप सिर्फ चाहते हैं सिर्फ 15 किताबों से मुझे ढूंढ के ये बात दी जाए तो वो फिर सिर्फ आपको 15 किताबों से दी जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन है बहस सर्फी, यानी आपने कुछ एक वर्ब लिखा है तो उस वर्ब की जो जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है रिवायत में आप उससे चीज को ढूंढना चाहते हैं तो आप क्लिक करें तो वो ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे खुला है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 किताबों में मुझे ये रिवायत ढूंढनी है तो मैं अपना एक मजमुआ बना देता हूँ, उसको मैं महफूज भी कर सकता हूँ तो फिर सिर्फ उन्हीं किताबों से मुझे ढूंढ कर जो है वो दी जाएगी। ये बहस सरफी है कि आप ये देखते हैं मिसाल के तौर पे। तो मुख्तसरन बस अब हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते, इस तरह आप रावी से सर्च कर सकते हैं, आप किसी आलिम से सर्च कर सकते हैं, आपको इब्ने तैमिया का नाम देखते हैं उनसे जो रिवायतें हैं तो वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाएंगी। रावियों की सर्च भी बहुत दिलचस्प है, वक्त की किल्लत है वरना मैं उस पर मजीद भी आपको बताता। आगे बढ़ते हैं और जो इसके कुछ और नुमाया फीचर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताया ये एक ऑप्शन है तकसीम। अच्छा देखिए बहस में हम एक इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं अमली की, बहस में चीजें किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक लफ्ज लिखा है, एक सहाबी का नाम लिखा है दही अकलबी, कि ये नाम अगर कहीं पर आया है रिवायतों में तो ये मुझे आप ढूंढ के बताइए। मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया कि जो मैंने नाम लिखा है इसके मुताबिक आप मुझे सर्च करके बताएं कि क्या इनका नाम कहीं पर आया है तो वो कौन सी किताब है। तो ये देखिए इन्होंने मुझे ये बता दिया है फौरन से कि इन सहाबी का नाम जो है वो, ये रिजल्ट्स चल रहे हैं अभी, ये देखिए नीचे आपको यहाँ पर नंबरिंग आया है 1400 किताबों में से सेकंड्स के अंदर ही आपको ढूंढ के दे रहा है। तो इसने मुझे बताया कि भाई 160 बल्कि उससे भी ज़्यादा 168 के करीब रिवायतें हैं जिनमें ये नाम आया है। अब मिसाल के तौर मैंने इस पर क्लिक किया कि भाई ये जो पहली रिवायत इसने मुझे दी है कि बुखारी की रिवायत है तो मैं ज़रा देखूँ ये रिवायत क्या है, यहाँ पर इनका नाम है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो रिवायत है ये मेरे सामने, इस रिवायत को कितने और सहाबा ने बयान किया है, तो मैं यहीं से अर्ज पे चला जाऊंगा, क्लिक करूंगा और ये मुझे इस रिवायत की पूरी तहकीक खोल के दे देगा। ये देखिए ये आपके सामने पूरी चीज मौजूद है। जो दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसी नाम से मुझे याद आ गई कि ये एक रिवायत है बहुत मशहूर, हदीसे जिब्रील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए हैं और आपने उनको दीन के मुतल्लिक बताया है और उनसे सवालात किए हैं, तो उस रिवायत के अंदर अल्फाज आते हैं कि जब वो चले गए तो एक साहिब ये कहते हैं कि वो जो शख्सियत आई थी रसूलुल्लाह की मजलिस में वो देहिया कल्बी थे, वो एक सहाबी थे देहिया कल्बी। तो जब हमने इसकी तहकीक की इसी तरीके से ढूंढा कि भाई ये जो साहिब, मिसाल तौर पे एक किताब है मुस्नद इसहाक बिन राहवे, तो बाकी जितनी किताबें हैं जिनमें वो हदीसे जिब्रील जेरे बहस है कोई भी नहीं कह रहा कि ये देहिया कल्बी थे, एक किताब में है कि वो देहिया कल्बी थे। तो अब हमें बहुत तशवीश हुई कि भाई ये एक साहिब जो है आखिर क्या वजह है कि इनको ये तरद्दुद हुआ है, इनको ये रिवायत पहुंची है, हालांकि सारे ये कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसे आदमी थे जिनको हम जानते नहीं थे। तो जब हमने तहकीक की इस नाम को डाल के मिसाल के तौर पे, तो अब हमारे सामने जो जो अब ये किताबें आ रही हैं तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो जो मुस्नद इसहाक बिन राहवे हैं जिन्होंने ये बात ली है, क्या वो देहिया कल्बी का जिक्र कहीं और भी कर रहे हैं और वहां से उनको गलत फहमी तो नहीं हो गई। तो चंद ही मिनटों के अंदर बात बिल्कुल जो है वो मुतहक्क हो गई। अभी देखिए रिवायत बल्कि आ गई है सामने कि हुआ क्या, हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए रिवायत आपके सामने है, गजवे से वापस आए हैं और आपको जिब्राइल आपसे मिलने आए हैं और कहा है कि आपने असलाह नहीं रखना और आगे जाके मजीद लड़ाई करनी है। तो जब वो जिब्राइल चले गए तो सईदना आयशा ने पूछा या रसूल ये कौन थे जो आपसे मिलने आए थे, तो रसूल ने फरमाया क्या तुमने देखा था उनको, तो उन्होंने कहा मैंने देखा था, मुझे दहिया कल्बी की तरह लग रहे थे। अब दहिया कल्बी एक सहाबी हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े वजीह, बड़े दिखने में बहुत ही यानी वजीह शक्ल के आदमी, तो उनको ये गलत फहमी हुई, तो रसूलुल्लाह ने फौरन वाजे कर दिया कि नहीं 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 वो दहिया कल्बी नहीं थे बल्कि वो कुछ और था। तो अब ये वो आदमी है मुस्नद इसहाक जिनको जिब्राइल और दहिया कल्बी की एक मुमासलत किसी रिवायत में पहुंची है, और वो यहां से मुमासलत उठ के दूसरी रिवायत में जाकर इंसर्ट हो गई। तो इस तहकीक से आप ये बता सकते हैं कि वो जिब्राइल ही थे जो रसूलुल्लाह से मिलने आए थे, वो दहिया कल्बी नहीं थे। और दहिया कल्बी क्यों नहीं थे उसकी वजूहात रिवायत के अंदर भी मौजूद है, सब सहाबा कह रहे हैं हम जानते ही नहीं थे। और दूसरी ये कि ये जो रिवायत जो साहब बयान कर रहे हैं वो खुद इस शक में मुब्तला है दूसरी रिवायत में कि जिब्रील दहिया कल्बी है। तो ये एक चीज है जो इस सर्च के ऑप्शन में आपको मालूम होती है। तकसीम मौजूई बिल्कुल मुख्तसर करके मैं जाता हूँ, इस सॉफ्टवेयर ने हदीस की एक अपनी तकसीम की हुई है, बताया है कि हदीस का कितने फीसद हिस्सा किन उनवानात पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर ईमान से मुतल्लिक 21% रिवायतें हैं, कुरान से मुतल्लिक 6% है, इल्म से मुतल्लिक 2% है, कसस अल-अंबिया से मुतल्लिक 3% है, इस तरह के से आप फितन से मुतल्लिक 3% है, इबादात से मुतल्लिक 29%। तो आप ये देखिए इबादात और ईमान ये मिलके जो है वो 50% के करीब जो है, यानी पूरे जखीरे रिवायात में 50% मौजूदात ईमान से मुतल्लिक हैं और इबादात से मुतल्लिक। तो ये पूरी एक तकसीम है, जब आप इसमें जाते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के मुहक्किकीन ने उन रिवायात को अलग करके मुरतब कर दिया है, उसके अपने मजामीन बना दिए हैं। अब ईमान में अल्लाह पर ईमान पे कितनी रिवायतें हैं, मलाइका पर ईमान पे कितनी रिवायतें हैं, ये किताबों पर ईमान पे कितनी रिवायतें हैं, 18% किताबों पर ईमान पर हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इसरार से अपनी कौम को ये बताया है कि उनके कुल बातें जो लोग उनसे मंसूख कर रहे हैं उसमें सिर्फ 18% जो है वो इस पर है कि पिछली किताबों पर ईमान लाओ और ये दीन को नया दीन नहीं है। तो ये एक आपको पूरा जो जखीरा है मालूमात का वो यहाँ से हासिल होता है। फिर आप इनके अंदर चले जाएं, मिसाल तौर पर आप काम करना चाहते हैं इबादत पे, आपने नमाज की रिवायतें या वजू की रिवायतें जमा करनी है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये काम पहले से यहाँ पर हुआ हुआ है, आप इनमें चले जाएं और उनसे बस उन रिवायतों को पढ़ें। मिसाल के तौर पर अब ये वुजू है, इनमें फिर सब कैटेगरीज हैं, वुजू के फजाइल के बारे में, वुजू में मिसवाक करने के बारे में, वुजू में पानी के बारे में कितना बहाया जाए, वो सब मौजूद हैं। फिर आप एक मजीद ना चले जाएं तो वो एक एक रिवायत खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी एक इस सॉफ्टवेयर का इम्तियाज है, इससे पहले जखीरे हदीस के ऊपर इस तरीके का जामे काम के मौजूआत की एक नई तकसीम, एक तो फिकी तकसीम मौजूद है उससे हट के एक तकसीम जो है उसमें करके तमाम जखीरे को एक जगह पे जमा किया जाए। बाकी बराह रास्त आप मसादिर पढ़ना चाहते हैं, ये सारे मसादिर मौजूद हैं इनमें। आप मिसाल तौर पे मैंने किसी रिवायत पे तहकीकी काम किया, मैंने उसमें बुखारी की किसी रिवायत का हवाला दिया, तो मैं सीधा इसमें जाऊंगा कि भाई मैं बराह रास्त देखना चाहता हूँ, मैंने बुखारी पे क्लिक किया और मेरे काम में मौजूद है कि भाई मैंने उसमें बुखारी की 352 नंबर रिवायत का हवाला दिया था, तो मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने बुखारी की 352 नंबर रिवायत जो है वो खुल के सामने आ गए। तो तमाम किताबें जितनी भी मौजूद हैं उसकी इन्होंने यहाँ पर तकसीम की हुई है, और तकसीम भी उनके अनामीन के लिहाज से, यानी वो मसानीद हैं, वो मौत्ता हैं, या वो मिसाल के तौर पे सनन की किताबें हैं, जो जो तकसीम मौजूद है उस लिहाज से उन्होंने यहाँ पर इसको वाज़े किया। ये पूरी आप यहाँ देख सकते हैं, सातुर मुस्तदरक हैं, यानी वो ऐसी चीजें जो किसी पुराने मुहद्दिस की शरायत पर आप उसमें इजाफा करते हैं, या मुस्नद हैं, यहाँ पर आप ये देखें जिनको सहाबी के लिहाज से मुरतब किया गया उनको मुस्नद कहते हैं, सुनन की किताबें हैं जिनको अहकाम के लिहाज से मुरतब किया गया है, इसी तरीके से जामे हैं वो किताबें जो मुकम्मल यानी अकायद इबादात मामलात की चीज़ें हैं, सियाह सित्ता की मारूफ 6 किताब, ये सब तकसीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो आप इनको बरह रास्त भी देख, मतलब फिकह की किताबों में आप देखना चाहते हैं बरह रास्त अहादीस कहाँ पर आई हैं, तो ये एक पूरी तरतीब यहाँ मौजूद है, इसको भी आप सनद वफात के लिहाज से तकसीम कर सकते हैं। तारीफात इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, यानी हदीस के तालिबे इल्मों के लिए, वो पढ़ना चाहें किताब कौन सी है, उसके मुकदमात क्या हैं, उसके मनाहिज क्या हैं, तो उस लिहाज से ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक चीज़ और जो मैं मुख्तसरन बता के बस खात्मा करूँगा, फिर आप कुछ सवाल करना चाहें इस हवाले से तो कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है, मुफ्त है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं यहाँ वेबिनार की स्क्रीन पे शेयर कर सकता हूँ, और इसकी इसको इस्तेमाल करने के कुछ जो मैनुअल्स हैं वो अरबी जबान में हैं, लेकिन आप उस पर उन्होंने तस्वीर भी दी हुई हैं, उनके ज़रिए से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे इल्म की हद तक जितने सॉफ्टवेयर इस वक्त मौजूद हैं उनमें इस सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही इम्तियाजी मकाम है, और चूंकि ये इंसानों का काम है और एक बहुत बड़े पैमाने पे यानी लाखों करोड़ों अल्फाज की डेटा एंट्री हुई है, तो कहीं आपको कोई गलती भी मिल सकती है। यानी कोई भी चीज़ इंसानी काम आपको पता है वो गलती से मुबर्रा नहीं होता, तो गलती जो है वो कहीं कहीं आपको किसी चीज़ में, किसी मस्तर में या किसी चीज़, मिसाल तौर पे देखें तिर्मिजी यहाँ पर है, इसमें सनद वफ़ात 256 लिखी हुई है, 279 है हम जानते हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी कुछ एक आध गलती, लेकिन ओवरऑल बहुत ही मुनज्जम, बहुत ही मुरतब और बहुत सारी चीज़ों में बाज़ औक़ात इसके जो मुहक़्क़िक़ीन हैं उस सनद के मामले में मुख्तलिफ राय देते हैं, लेकिन जब आप फिर तहकीक करने बैठते हैं तो फिर इनके जो मुहक़्क़िक़ीन की राय है उसको कंपेयर करते हैं। इस तरह मैंने पहले कहा था, शुरुआत की एक दुनिया है इल्म, हदीस के इल्म के जो शारहीन हैं, मुहक़्क़िक़ीन हैं, उनकी अपनी सैकड़ों की तादाद में तसानीफ़ हैं, फिर आप कंपेरेटिवली देखते हैं, लेकिन एक पूरा नया ज़ाविया नज़र हदीस के बारे में इस सॉफ्टवेयर ने मौजूदा दौर में दिया है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, और इतना जाजिब नजर है ये सॉफ्टवेयर कि बाकी कोई सॉफ्टवेयर इस वक्त मेरी नज़र में इसका मुकाबला नहीं करता। तो ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में चंद गुजारिशात थी। कोई सवाल अगर आप इस हवाले से करना चाहें तो मैं हाजिर खिदमत। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये कतर की जो वजारत मजहबी उमूर है उसके, और ये कासिम दुरवेश फखरू इनकी माली मुआवनत से बहुत ही बड़े सरमायदार गुजरे हैं कदर में, इनकी वसीयत भी थी, इन्होंने इसके लिए वसायल मुहैया किए, 350 के करीब उलमा को 30 साल तक ये सहूलत फराहम करना कि वो उन चीज़ों को मुरतब करें, और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी मखतूतात, तो एक बहुत बड़ा इल्म और तहकीक का मरकज़ है जो इसके लिए कायम किया गया जिसने ये बनाया। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि ये फ्री है, यानी इसको हासिल करने के लिए सिर्फ आपने क्लिक करना है और ये आपके पास आसानी से आ जाएगा। और आम लोगों की सहूलत के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अरबी से वाकिफ नहीं है बराह रास्त, वो जब कोई चीज़ यहाँ सर्च करें तो सिंपल वो उस चीज़ को कॉपी करें। देखिए मिसाल देता हूँ मैं आपको, ये आपने यहाँ से कॉपी की, आपने ये रिवायत पढ़ी, आपको ये पता चल गया कि भाई ये रिवायत 6 जगहों पर है, आपने इस रिवायत को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप इसको वेब पर ले गए और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया और साथ उसके उर्दू लिख दिया या इंग्लिश लिख दिया, तो खुद गूगल के अंदर बहुत सारे, चूंकि ये सर्च का एक वो है, तो आपको ये उसका तर्जुमा निकाल के दे देगा। यानी अगर आप तर्जुमा करने पर कुदरत नहीं रखते तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखें, ये देखिए ये रिवायत जो है वो ये बता देगा कि ये कहाँ कहाँ आई है और इसके क्या क्या मसादिर हैं और इसके तराजम किन किन लोगों ने किए हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, जहाँ आप चाहें वही करके बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बराह रास्त भी इससे, वो लोग जो अरबी से वाकिफ नहीं है, इस्तेफादा कर सकते हैं। कोई सवाल ना हो तो हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अगर कोई सवाल हो तो।
लिंक आपने दिया है islamweb.net, आगे क्या है इसके?
मैं यहाँ पर आपको लिंक भी भेज देता हूँ। शुएब अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक खोल दिया है जी
हेलो
शुएब साहब, आप जी जी आप बोलिए।
जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आजकल जो गामिद साहब का एक हदीस प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ भी इसका कोई लिंक है कि उसमें भी ये यूज हो रहा है या उसके अहदाफ भी कुछ ऐसे ही हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने आपको एक मिसाल दी थी बीच से, वो हमारी जो इस दौरान हदीस प्रोजेक्ट के ऊपर तहकीक है वो उसी की एक मिसाल थी। हमारा जितना भी काम है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के मरहून मिन्नत है, ये भी है, इसके अलावा भी और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम इन्हीं के जरिए तहकीक करते हैं, और जब हमने आगाज किया था उसी वक्त से ये हमारे जेर इस्तेमाल है। ये भी हैं कुछ और पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिन पे कुछ ज़्यादा हमें किताबों का एक्सेस या शुरुआत का एक्सेस मिल जाता है, और ये भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से ये काम इतना स्पीड अप हुआ है कि हमने पहले साल में कमोबेश मैं और हमारे साथ हमारे फाजिल मोहक्किक आमिर गजदर साहब जो इस वक्त शरीक भी हैं, और उन्होंने ही मुझे इससे मुतारिफ भी कराया था। मेरा पहला तारुफ इस सॉफ्टवेयर से उन्हीं के जरिए हुआ था। वो काफ़ी अरसे से जो रीस के बाद में जदीद सॉफ्टवेयर हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो भी इसमें शामिल है। तो इन्हीं की वजह से हमने एक साल में कमोबेश 14,000 रिवायतों पर काम मुकम्मल किया, क्योंकि हमें मुराजियत के लिए लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ा, एक एक किताब खंगालनी नहीं पड़ी, एक एक सोर्स ढूंढना नहीं पड़ा। वो सारा काम मुरतब शक्ल में हमारे सामने, जो काम हम करते हैं वो ये है कि एक एक चीज को गौर से पढ़ना, उसको जमा करना, उसकी सनद पर जो तहकीकात है उनको देखना, और फिर उसमें जो असल मेहनत का काम होता है वो ये कि आप उसमें जामे मतन बनाते हैं। यानी हमारा जो काम है रिवायत का वो ये है कि जब हम पढ़ लेते हैं कि भाई एक सहाबी 15 जगह पर ये बात कर रहे हैं, तो हम उस 15 जगह को मिलाकर एक बात बना दें रेफरेंसेस के साथ। तो वो काम भी हम इसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही अंजाम देते हैं। या आप देखिए कि यहाँ मिसाल के तौर पे ये एक रिवायत है, इस रिवायत के यहाँ पर आप देखिए जब हम ये मतन के हवाशी हैं इस रिवायत, तो ये सब कुछ हमने इन्हीं की मदद से लिए हैं। ये मैंने बताया है कि असल यहाँ से ली है, इसके रावी ये हैं, इनको इतनी किताबों में नकल किया गया है, और ये उसी तरतीब से जिस तरतीब से इनके जमाने थे, और फिर इन रिवायतों में कहाँ कहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, और इसके बारे में ये पूरी तहकीक है। एक एक रिवायत के नीचे अगर आप देखें तो पूरी तहकीक उन 100 100, 200 200, 300 300 रिवायतों का खुलासा आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि क्या कहाँ पर क्या अल्फाज हैं। तो हमारे तहकीकी काम में नुमाया हैसियत से ये सॉफ्टवेयर मदद कर रहे हैं।
शुक्रिया जी। बस एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये यूई में ये वेबसाइट ब्लॉक्ड है कि शायद कोई और वजूहत भी हों सियासी, लेकिन अगर आप इसको मोरत की वेबसाइट पे अपलोड कर सकें एज ए जिप फाइल तो बढ़िया फायदा।
अच्छा, देखिए चूंकि ये सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है, इसकी कंपनी हमारी नहीं है, तो ये हो सकता है कि इनको हम ईमेल कर सकते हैं और हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है। वैसे यहाँ पर ये 8 के करीब लिंक्स मौजूद हैं जिनसे आप कर सकते हैं, और चूंकि ये आम है तो आप इस वेबसाइट के अलावा भी इसको सर्च करें तो ये आपको गालिबन मिल जाएगा।
जी
आप
जी
गूगल पे
ठीक
इसको
है,
लिखेंगे
थैंक
तो इसको।
यू। मैंने पूछना ये था, क्या ये सॉफ्टवेयर में वो तमाम जो हदीस की बुक्स हैं जो इस वक्त मतलब के हम जानते हैं, मतलब वो तमाम बुक्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा और कोई किताब नहीं है हदीस की? और दूसरा ये पूछना था कि क्या जो अहले तशी हैं उनकी जो किताबें हैं क्या वो भी इसमें मौजूद हैं, मतलब उनके लिंक्स भी मतलब उनके जो मुताबिक जो हदीस की बुक्स हैं या मतलब हदीस हैं क्या वो यहाँ अवेलेबल हैं? तो इसके
बहुत
बारे में थोड़ा
बहुत
सा पूछना।
बहुत अच्छा सवाल किया मोइन साहब आपने, ये आपकी इल्म से दिलचस्पी को भी जाहिर करता है। देखिए, ये दावा करना तो शायद मुश्किल होगा कि मैं ये कहूँ कि इसके अलावा कोई हदीस की किताब दुनिया में पाई ही नहीं जाती। मुमकिन है, क्योंकि इंसानी काम है, तो कहीं पर कोई मखतूता पड़ा हुआ हो, कहीं पर कोई ऐसी नायाब किताब किसी लाइब्रेरी के शेल्फ के पीछे छुपी हुई हो जो हम तक ना पहुंची हो, हिस्टोरिकल काम है। लेकिन ये मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि जो चीजें इन्होंने सामने रखी हैं वो दुनिया में जहां जहां मौजूद हैं उनको उन्होंने जमा कर दिया है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती मतन के लिहाज से हदीस की किताबों में। ये मैं वाजे कर चुका हूं कि तहकीकी मवाद इतना नहीं है, शुरुआत इतनी नहीं है, लेकिन हदीस की किताबें और मखतूतात ये जो इसमें मौजूद हैं इसके अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। ये मैं अपने इल्म की हद तक, मेरी नाकिस राय यही है। यहाँ तक दूसरी बात आपने पूछी अहले तशय्यों के हवाले से, तो मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यों के अंदर इल्मे हदीस के मामले में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। वो इख्तलाफ ये है कि अहले तशय्यों जो हैं वो अपने इमाम को जब वो रिवायत करते हैं तो उसी मकाम पर रखते हैं जिस मकाम पर हमारे नजदीक सहाबा फायज है। यानी कि वो उस इमाम के बारे में कोई जरा कोई तादील, कोई इस चीज का जायजा लेना कि उसका हाफजा कैसा था, वो सिका था नहीं था, उसने ये बात कहाँ सुनी, कोई उसकी मुलाकात, यानी ये सारी चीजें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आप वेरीफाई करते हैं एक रावी से, वो इसके कायल हैं कि वो अपने आइम्मा से ये वेरिफिकेशन नहीं लेंगे। उसकी वजह उनके नजदीक बाज उनके मजहबी فہم ہے کہ یہ جو امام ہے یہ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، انہی کے چنیدہ ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس وجہ سے جو شیعہ ذخیرہ احادیث ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمیں وہ یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کی پیش کردہ روایت کے اوپر تحقیق کر سکیں، اور خود ان کے علماء نے اپنے آئمہ کو اس تحقیق سے نہیں گزارا. لہذا ہمارے نزدیک وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کی حیثیت سے اس جگہ پر نہیں کھڑی نہیں. دیکھیے ہم بھی جو اس وقت روایت پہ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت تحقیق نہیں کر رہے ماضی کے کام پر، یہ ہوئی ہوئی تحقیق کے اوپر تحقیق ہے. یعنی ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ راوی کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان سے کیا بات، وہ تو ہمارے سامنے مرتب کام آ چکا ہے تو ہم اس کام کی تحقیق کرتے ہیں. تو اہل تشیع علماء کے نزدیک یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے اہل سنت جو ہیں وہ ان کے مصادر کو ذخیرہ احادیث کے اندر قابل اعتنا نہیں سمجھتے. اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے، وہ کرتے بھی ہیں. ہمارا نقطہ نظر اس میں یہی ہے کہ ہم ان روایات کو نہیں لیتے. آپ پر بات واضح ہے مومن صاحب؟
جی سر بہت شکریہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ مطلب کہ جو یہاں یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ اس میں وہ جو اہل تشیع حضرات کی جو حدیث ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو بس یہ
حسن بھائی یہ پوچھنا تھا کہ اس سافٹ ویئر کی کریڈیبلٹی کیا ہے، مطلب کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ نے کوئی روایت لی ہو اور بعد میں جو آپ کے پاس موجود ہیں ہارڈ کاپی اس کی، اس کے ساتھ آپ نے چیک کیا ہو کہ اس میں یا الفاظ میں یا پھر اس کی سند میں یا پھر اس کی اور کوئی ایسی چیز کے اس میں ڈفرینس ہو، ایسا کبھی ہوا ہے؟ یعنی اتنا یہ پاکستان میں کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جس کو یہاں کے جو مذہبی حلقے ہیں ان کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے، تو بندہ پوری مطلب اس کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس کو یوز کر لیتا ہے، یعنی اگر اصل مصادر کے ساتھ رجوع نہ بھی کرے تو. تو اس کی کیا ہے، اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے؟
دیکھیے میں اپنے 2 سال کے تجربے کی حد تک بتا سکتا ہوں. میں 2 سال کم و بیش ہو گئے مجھے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور میرا روز کا 5-6-7 گھنٹے کا اس کا استعمال ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں، اس سے چیزیں اخذ کرتا ہوں. جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنا بڑا ذخیرہ ہے، جتنا بڑا ڈیٹا اس میں ڈالا گیا ہے. اچھا یہ میں آپ پہ یہ ایک چیز پہلے واضح کر دوں کہ اس کے جو محققین ہیں ان کے اوپر کوئی سوال اس طریقے سے آپ نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کوئی مختلف نقطہ نظر کے، وہ حدیث کے بارے میں اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں جس کے بارے میں ہمارے اسلاف قائل ہیں، اور وہ انہی کی چیزوں سے استفادہ کر کے اس حدیث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. یعنی اس معاملے میں وہ کوئی نئے نہیں ہیں یا انوکھے نہیں ہیں، وہ انہی کتابوں سے انہی اصولوں کے مطابق چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. جو مسٹیک کہیں کہیں ہو سکتی ہے یا جو کوئی 2-4 مقامات پہ سامنے آئی ہے، اس میں دونوں پہلو میں، یا تو وہ سافٹ ویئر کی تکنیکی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سند میں انقطاع ہے، یعنی بیچ میں غائب ہے کراوی اور نہیں پتا، لیکن حکم میں وہ روایت صحیح بیان کی جا رہی. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ فوراً پکڑی جاتی ہیں سافٹ ویئر. تو میں نے ان کو کچھ چیزوں کو جمع بھی کیا ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، 5-6-7 کے قریب اب تک میرے سامنے وہ آئی ہیں کہ جہاں پر اس طریقے کی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی خود سافٹ ویئر ہی نے بتا دی ہے دوسرے ذریعے سے کہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ غلطی سامنے آ جاتی ہے. لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں تو بالکل اسی طریقے کی ایکوریسی ہے جو باقی جگہوں پر. یعنی یہ غلطی اس سے کم غلطی ہے جو ہمارے یہاں کتابت لوگ ہاتھ سے کرتے تھے اس سے ہو جاتی تھی، یا اس کے بعد کتابیں چھپنے میں ہو جاتی ہے، اس سے بہت کم غلطیاں ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہی نہیں موجود، کچھ غلطیاں ہیں. اور کچھ معاملات میں جو محققین ہیں، جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے، اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ بعض متساہلین ہیں، بعض متوسطین ہیں، سند کے رد و قبول میں ان کی کچھ وہ ہیں. تو جوامع کے جو محققین ہیں وہ متساہلین تو بالکل بھی نہیں ہیں، یعنی وہ بہت تحقیق کے بعد سند کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ضعیف قرار دیتے ہیں. لیکن کہیں کہیں آپ کو اختلاف مل سکتا ہے. مثال طور پہ شعیب ارنوت ہیں، انہوں نے مسند احمد پہ کام کیا ہے. تو اس کا جو اچھا طریقہ ہے، جو میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ دیکھیے آپ نے کسی روایت کو بنیادی روایت بنانا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر اس سافٹ ویئر کے محققین کیا حکم لگا رہے ہیں، और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या उस किताब के ऊपर किसी और मुहक्किक ने अलग से काम किया हुआ है, शामिला में वो चीजें मौजूद हैं, तो आप सीधा उस रिवायत को वहां ले जाएं और उसको कंपेरेटिवली देख लें, मतलब शुएब अरनऊत हैं या बशार अव्वाद हैं, ये बराह रास्त एक किताब को फोकस करके काम कर रहे हैं मुस्नद अहमद पे, तो आप ये देख सकते हैं कि मुस्नद अहमद की एक सनद एक साहिब यहाँ बता रहे हैं, दूसरे वहां बता रहे हैं, तो क्या वजह है इनमें इख्तलाफ हो गया। तो इख्तलाफ जहां होगा उसकी कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक 90% से ज्यादा रिवायतों में कोई इख्तलाफ नहीं।
शायद थोड़ी सी एक में वो बात थी कि कुछ अहादीस ऐसी होती, जैसे अल्बानी, शेख अल्बानी ने कुछ काम किया बुखारी शरीफ पे, तो वो कुछ अहादीस जो थी वो गायब कर गए, मतलब वो उन्होंने लिखी नहीं अपनी किताब में। तो क्या इसमें कोई ऐसा कोई मसलक या फिरका वारियत वाला कोई एस्पेक्ट है कि मतलब कुछ अहादीस जो है वो लिखी ना गई हो, मतलब जहन नहीं उनसे मतलब मुमासलत नहीं रखता तो वो लिखते नहीं है, तो क्या ऐसा तो कुछ आपने
नहीं,
को पाया, मतलब
ऐसा
आपने
नहीं
देखा सॉफ्टवेयर को?
जी, आपका सवाल मैं समझ गया, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं बुखारी की भी और मुस्लिम की भी, जिसके ऊपर इन्होंने हुक्म लगाया है ज़ईफ का, और उसकी वजूहात उन्होंने लिखी हैं कि इनके नज़दीक इन किताबों में भी अगर कोई रिवायत आई है तो वो ज़ईफ हो सकती है, इस पर इनके यहाँ कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे अहले इल्म उलमा जो उम्मत के बड़े तबके के नजदीक इमाम की हैसियत रखते हैं, लेकिन फन्ने हदीस में उनसे रिवायत ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये एक बिल्कुल एक तरह का हसास मामला है। इस तो लोगों के जज्बात वाबस्ता होते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के मौकिकीन ने वाजे तौर पर लिखा है, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल में इस पर रोशनी भी डाली थी, कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी जो है इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह सिराजुल्लाइमा के शागिर्द में से हैं, दरामिजा में से हैं, आपकी चीजें देते हैं और आपका पूरा इल्म उन्होंने मुरतब किया है, लेकिन फन हदीस के उलमा के नजदीक उनकी रिवायत काबिल इतना नहीं है हदीस के बाद में। तो ये चीज बहुत सराहत के साथ यहाँ पर भी मौजूद है, यानी इस मामले में कोई किसी के साथ तख़फीफ की गई हो या किसी के साथ कोई रियायत की गई हो, ये बिल्कुल नहीं है। ये दो और दो चार की तरह सॉफ्टवेयर में उन्होंने बयान किया। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया जी, आपने इस नशिस्त में आप शामिल हुए, इस पैगाम को आम भी करें, अलवारिद का जो पैगाम है कि इल्म और तहकीक को के मिजाज को फरोग दिया जाए, लोगों में राबते बढ़ें, और ये जो फोरम हमने शुरू किया है वेबिनार का, कोई भी आप में से आपके जानने वालों में से साहिब इल्म आदमी हो, कोई तहकीक पेश करना चाहता हो, तो वो यहाँ पर हमसे राबता करें, यहाँ पर तशरीफ लाए, उसके लिए फोरम ओपन है, और अपनी आवाज़ को दुनिया भर तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर इतनी देर सुनने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।